पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण 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 नारायण
प्रारंभ में पाप और पुण्य अलग अलग होते हैं, दोनों कटते नहीं आपस में। पाप है वो तो फौजदारी मामला है और पुण्य है वो दीवानी है, ये अलग अलग विभाग अलग अलग है। तो ना पाप से पुण्य कटते हैं ना पुण्य से पाप कटता है, ये दोनों अलग अलग है। दीवानी और फौजदारी मानते हो लेना देना व्यापार आदि में, ये दीवानी कायदा होगा, मारपीट करने की फौजदारी होगा तो पाप से फौजदारी हो, दंड भोगना पड़ेगा। पुण्यों का फल अलग भोगना पड़ेगा, पापों का फल अलग भोगना, ये दोनों विभाग अलग अलग है। यानी पुण्य पाप कट गया, पाप से पुण्य कट गया, ऐसा नहीं। प्रायश्चित किया जाए पाप के लिए तो उस पुण्य से पाप कट जाता है प्रायश्चित रूप से, ऐसे आप सब कटते नहीं, क्योंकि जुर्माना से भी तो दंड कट जाता है। जुर्माना दे दिया उससे कर्ज कम हो जाएगी, तो इस तरह से पुण्य से वो उनके लिए किया जाए तो प्रायश्चित होता है, नहीं तो न्यार बिल्कुल अलग अलग।
राम राम का उच्चारण करने मात्र से भी कोई जीवन में परिवर्तन हो सकता है?
परिवर्तन तो दिखता नहीं, होता जरूर है पर दिखे जितना नहीं होता, दिखे जितना होता मन लगा करने से। भाव कुभाव अनख आदश हूँ नाम जपत मंगल दिश दश हूँ, मंगल तो होगा इसमें संदेह नहीं, परंतु भजन का प्रभाव दिख जाए ये तो साधन सुमेरण जेनर करे भवभारती गोपदी होता रहे। आदर से इस करते हैं तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है, नहीं तो राम इतना कहना भी निरसन नहीं जाएगा किसी से, भाव को भाव किसी से नहीं मातुम से होगा परंतु प्रत्यक्ष में नहीं होगा। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो, भगवत भजन किया जिसका अनुभव बहुत थोड़े आदमियों को होता है, क्योंकि सांगोपांग भजन होता नहीं, लाभ जरूर होता है परंतु अनुभव साफ साफ देखना लग जाए वैसा नहीं होता।
गीता अभिषेक प्रश्न किया है, आठवें अध्याय के दसवें श्लोक में प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्यायुक्त योग बोले तो ये बात कहते हैं ब्रह्म मध्य प्राण मावी सम्यक सतम परम पुरुष मुपेति दिव्य, और उधर तेरहवें श्लोक में कहते हैं कि अंत काले चमामे मूर्ध्याधायात्म ने प्राणम वास्तव तो योग धारणा, तो ये ब्रह्म मध्य वो ठीक है ये ठीक है
कैसे? ठीक तीन तीन श्लोक है या आठवा अध्याय में सातवें अध्याय के अंत में जो श्लोक कहे उनमें सात बातें कही थी, उन सात बातों का प्रश्न है दो श्लोकों में और तीन श्लोकों में उनका उत्तर है, और चौथा सामान्य छठा और सातवां पूर्ण है। तो सात श्लोकों में भगवान ने सात प्रश्नों का उत्तर दिया। सातवां प्रश्न एक अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, उनके लिए सगुण निराकार सगुण निर्गुण निराकार सगुण साकार तीन तरह की उपासनाओं के तीन तीन श्लोक है। उसे अगाड़ी भगवत भक्तों की बात है, अगाड़ी शुक्ल प्रश्न गति है, ऐसा आठवां अध्याय है।
दसवां श्लोक अलग प्रकरण का है, तेरहवां श्लोक अलग प्रकरण का है।
आठ नौ दस है ये एक प्रकरण है, ग्यारह बारह तेरह एक प्रकरण है,
चौदह पंद्रह सोलह सगुण साकार का अलग।
हाँ अलग है, सत्रह अठारह उन्नीस बीस एक बाईस तक है, उन्नीस बीस इक्कीस बाईस एक है, तेईस श्लोक से ये गतियों का वर्णन है, शुक्ल कृष्ण दोनों गतियों का, ऐसा आठवां अध्याय है। साधक संजीवनी देखो उन्हें ठीक समझ में आ जाएगा। अब गोदावर लिखने पर मैं बता दूं, परंतु साधु संजीवनी से लिखा हुआ है, मिल जाएगा। तो इस वास्ते वो दो है, इन दोनों साधनों में सात आठ नौ इन आठ नौ दस इन तीन श्लोकों में और ग्यारह बारह तेरह इन तीन श्लोकों में दोनों में योग की प्रक्रिया है। और अगर ये सुलभता बताई, चौदहवें श्लोक में सुलभता बताई है, मनुष्य में योग का सहारा नहीं, केवल भगवान को याद कर, भगवान का याद करता रहे, स्मरण करता रहे, उसके लिए भगवान के मैं सुलभ हूँ, अनन्य चेता सत्संग योमांग स्मृति नित्य सब सस्याम सुलभ अपार सब। गीता भर में सुलभ शब्द एक बार ही आया है, दो बार नहीं आया सुलभ। तो अनन्य चेत और नित्य और निरंतर भजन करता है उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ सब मिल जाता हूँ। सुलभता का मतलब ये प्राणायाम आदि कोई करना नहीं पड़ता है, केवल मेरे आश्रित हो जाए शरण करे उसमें मैं सुंदरता से मिल जाता हूँ, ऐसा कहा है। और चौदह पंद्रह सोलह में वो बता दी नारी मानो उनको प्राप्ति ब्रह्म लोग तो नहीं होते, मेरी प्राप्ति से पुनर्जन्म नहीं होता। और सत्रह अठारह उन्नीस में बता दी, बीस इक्कीस बाईस में भक्ति बता दी, अगर शुक्र गति बता दी ऐसा।
कहते हैं मस्तानी सर्वभूतानी और एक तरफ कहते हैं नच मस्तानी भूतानी, विरोधाभास क्या
है? विरोधाभास है ये इतना ही नहीं है, विरोधाभास दो है, दो
कह दिए इन्होंने, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट है उन्होंने पूछा है।
अच्छा तो ये श्लोक चौथा और पांचवा दो श्लोकों में अध्याय के चौथा पांचवा श्लोक देखे आप, उनमें चार बातें कही है, दो विरुद्ध बात कही है, आपने दो ही लिखे, दो और है उसमें। माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त स्वरूप से सब संसार में मैं व्याप्त हूँ, और मत्सानी सर्वभूत है सब भूत मेरे में स्थित है, ये दो बात कही। और फिर न समत्सानी मेरे में भूत प्राणी नहीं है, और न चांग मैं नहीं हूँ, ऐसे मैं सब में व्यापक हूँ, मैं सब में नहीं हूँ, मेरे में सब भूत प्राणी है, मैं सब में नहीं हूँ, ये दो बात कही है। चार बात है, दो लोग विरोधी है। तो ये कैसे है, जैसे आकाश में बद्दल होता है तो बद्दल में आकाश है और आकाश में बद्दल है, दोनों बातें सच्ची है। और आकाश में बदल नहीं है, वास्तव में आकाश में बदल है ही नहीं, वो तो फैसला होता है, नष्ट होता है, आकाश हरदम रहता है, और बदल में आकाश है ही नहीं, बदल में आकाश है ही नहीं, क्यों कि बदल तो मरते मिलते हैं, उसमें रहने वाला आकाश है नहीं रहता है, इस बात बदलों के बीच में आकाश हो तो बदल के नष्ट होने से आकाश भी नष्ट होना चाहिए, तो आकाश निर्लेप रहता है। तो बदलो में भीतर आकाश नहीं, आकाश बहुत आनंद से बदलों के भीतर भी व्यापक रूप से है, और बदल भी आगंतुक रूप से आकाश में है वास्तव में नहीं, ना आकाश बदल है ना बदल में आकाश है, अभी शंका तो बोलो इसमें, इतनी बात में कह दी बात तो सब ये नहीं समझो, शंका बोलो। छोटे पौधे पूजे में कई बातें लिखी, तो देखो आप सब क्षमा करेंगे, क्षमा मांग कर बोलता हूँ मैं। आज ज्ञानी भी बहुत बने हुए हैं, भक्त भी बहुत बने हुए हैं, वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक बहुत थोड़े मिलते हैं, बनावट मिलते हैं। तो ज्ञान वाले भक्ति की, भक्ति वाले ज्ञान की निंदा करते हैं। वे वास्तव में अपने स्वरूप में मन अपना भाव है उसमें भी पूर्ण नहीं है, वे ज्ञान करते निंदा। ज्ञान मार्ग ही तो भक्ति वालों को माया कहते, माया में है सभी। और भक्ति वाले कहते हैं कि ये तो मायावादी है ज्ञान वाले, और ज्ञान वाले कहते हैं भक्तिवादी है, जगह तीनों लोगों में तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। गीता की टीका में, ज्ञान मार्ग में टीका में भक्ति मार्गियों को लथेड़ा है खूब, और क्या ये भूल में सभा। और भक्ति मार्गियों ने कहा है ज्ञान है तो ये तो नास्तिक है, ये तो बौद्ध है, छिपे हुए बौद्ध है, ऐसा गीता की टीका में मैंने पढ़ा है। तो क्या बात है कि अनुभव नहीं है, ना भक्ति करने वालों को भक्ति का अनुभव है, ना ज्ञान मार्ग वालों को ज्ञान का अनुभव है। केवल पक्ष लेकर टोलियां बढ़ाई है, टोलियां बढ़ने के लिए नहीं है ये मत अनुभव करने के लिए है। ज्ञान का भी अनुभव करो, भक्ति का भी अनुभव करो, उसके लिए है। सच्चा साधु होता है वो कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करता, अपने मत का अनुसरण करता है, तत्परता से अनुसरण करता है, दूसरे काट छांट नहीं करता। काट छांट करते हैं वे अधूरे हैं, वास्तव में अपने मत में पूर्ण नहीं है। निंदा दूसरों की करते हैं पर अपने मत में पूर्ण नहीं है, ये बात है। नहीं तो भक्ति वालों को ज्ञान हो जाता है। सबरी से भगवान ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये सहज स्वरूप प्राप्त होना ये ज्ञान है। तो मेरे दर्शन होने से सहज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, मानो भक्ति से तत्व ज्ञान भी हो जाता है, भक्ति भी हो जाती है। और तत्व ज्ञान होने पर फिर भी बाकी कुछ नहीं रहता है। इसी बात जरूर है कि भक्ति मार्ग की बात में इतनी नहीं बता सकते, ज्ञान से भी भक्ति की बात मिल जाती है। परंतु एक तो भगवान के दर्शन हो जाए और एक भक्ति का मार्ग ठीक बता दे, ये नियम नहीं है। दोनों का अनुभव जिसने किया है वो ठीक ठीक बता दे, ज्ञान मार्ग को भक्ति मार्ग को दोनों को बता देगा ठीक तरह से। और भक्ति मार्ग वालों को भी ज्ञान हो जाता है, ज्ञान मार्ग वाले भक्ति हो जाती है। परंतु आग्रह रखते हैं एक मार्ग का, उनको ना ज्ञान वालों को भक्ति होती ना भक्ति वालों को ज्ञान होता, वो आग्रह रखते हैं, वो मतवादी है। मतवादी समझे नहीं तत्वादी की बात, अरिया उगे सूर को कहे अंधेरी रात, अरिया मत रखता तत्व का मत का रखता ना है, मत का रखता जो फिर तत्व पाया ना है। एक मत अच्छा दिखते की मत पड़ा है, ये मत विवाद के लिए नहीं है, ये अपने को अभिमान करना बड़ा मानना दूसरा मानना इसके लिए नहीं है, ये है अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जो आपको अच्छा लगे उस मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो तो पूर्णता हो जाएगी, ज्ञान मार्ग में थोड़ी पूर्णता हो जाएगी, योग मार्ग में थोड़ी पूर्णता हो जाएगी, पर दूसरों का खंडन मत करो कभी भी। खंडन करते हैं तो ज्ञान है वहाँ हमारे भगवान नहीं है, नहीं तो खंडन कैसे करें अपने भगवान का। और भक्ति करते हैं तो वो ज्ञान में तुम्हारा भगवान नहीं है, अगर भगवान होते तो निर्गुण खंडन कैसे करते, तुम्हारा ही अधूरापन सिद्ध होता है इससे। अब समझ ख्याल भाई नहीं, मानो भक्ति करने वाले अगर ज्ञान मार्ग का खंडन करते हैं तो ज्ञान मार्ग में तुम्हारे भगवान नहीं है, तुम तो खंडन करते हो तो तुम्हारा मत अल्प हुआ। ऐसे ज्ञान मार्ग वाले भक्ति का खंडन करते हो, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है तुम्हारा, तभी तुम खंडन करते हो। मेरी बात पूरी समझ में आई नहीं है, पता नहीं है, पूछो आप कोई नहीं आई हो तो। सच्चा भगत होता है वो ज्ञान का खंडन नहीं करता, वो सच्चा बस अपने भजने के साथ अपने अपने उसमें लगा हुआ है। दूसरे की बात करने का समय कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, एक बात सुनी है वो ठीक हो इसमें तो मेरे भी संदेह है, पर सुनी में जरूर है कि गोस्वामी जी महाराज और सूरदास जी महाराज जा रहे थे, सामने आ गया मतवाला हाथी। हाथी आया तो सूरदास जी महाराज भाग करके और एक तरफ चले गए और गोस्वामी महाराज वैसे ही रहे, हाथी चल गया। तो क्या था महाराज, सूरदास जी महाराज की भक्ति कमजोर है, तुलसीदास जी भक्ति जोर है, जो डरे ही नहीं, ये कारण नहीं है। सूरदास जी के लाला छोटा है इस वास्ते उसी रक्षा के भाग गए, रू के बाण वाला है इस डर किस बात का है, पूरे अधूरे कैसे हुए। कैसे ज्ञान मार्ग वाले का बालक राम जी का अवतार है, वो है राम जी का 12 कलर का है, कृष्ण भगवान का 16 कलर का है, अरे चंद्रमा 16 कलर का वो पूर्ण होता है और 12 राशि का चंद्रमा सूर्य पूर्ण होता है, पूरे हुए दोनों ही, अधूरे कैसे हुआ। सूर्य वंश है तो सूर्य 12 राशि में एक मकर कुंभ मीन 12 राशि, तो 12 राशि 12 करना है, 12 महीना है, चंद्रमा की 16 कला है, तो 16 कला का पूर्ण अवसार, 12 कला का पूर्ण अवसार, पूरा कोई नहीं है पूर्ण। ये संप्रदाय में आकर दूसरे खनन करना है, महान आदर्श हो रहा है, बड़ा भारी आदर्श हो रहा है, दोनों का ही गलत है रास्ता। सच्चे रास्ते में खनन करने को भगत कहाँ, हमारे भगवान का भजन करेंगे ये करें। एक चौबे जी महाराज थे, उनको भोजन कराया, लड्डू पेड़ा खीर सब भोजन कराया, भोजन के बाद में सुपारिश के सामने तो बोले कि पेट में अगर थोड़ होती तो एक पेड़ा और रख से, इसे सूखे काट हूँ माथा पच्ची कौन करे, अब जगह नहीं है पेट में। तो ऐसे हंसनी भजन में रखो, बस ज्ञान मार्गो साथ भक्ति मारे, भगत कहाँ सूखे काट हूँ माथा लगाने के लिए, खंडन करने भगत कहाँ, अपना काम भी नहीं पूरा होता, वो तो सच्चे हृदय से लगे रहते, खंडन नहीं करते, ये मतवादी होते हैं, मतवाले होते हैं। तो मतवाले तो ये बोलते हैं बाबर भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल रहे वचन संभारे, कोई संभव नहीं बोलते। इस वास्ते किसी का खंड मत करो, किसी की द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो, अपने मार्ग में तत्परता से लगे रहो, ठीक हो जाएगा, भगवान कर देगा आपसी सब ठीक हो जाएगा, लगे रहो। ऐसा लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, हो गया। और पूछो भी पूछना भी, हाँ जी
है ना, ये तो बताया अभी, कहते हैं भक्ति में और ज्ञान में ऊंचा कौन है ये बताइए,
ऊंचा कौन, ऊंचा है ही नहीं। ये सारी भक्ति से जो तत्व मिलता है, ज्ञान से वही तत्व मिलता है, ज्ञान से जो तत्व मिलता है, भक्ति से वही तत्व मिलता है। नारायण नगर के रज बहारा अनेक, भावे आवो किधर से आगे स्थल एक। अब इस वृंदावन में आने के लिए यहाँ से पूर्व में रहते हैं वे कहते हैं वृंदावन पश्चिम में है, हमने जाकर देखा है, कई बार गए हैं पश्चिम में है, पश्चिम वाले कहते हैं बिल्कुल गलत बात है, हम गए हैं पूर्व में है वृंदावन, हम गए हैं देखा है हमने, दक्षिण में रहते उत्तर की तरफ है वृंदावन, तो उत्तर में बिल्कुल सच्ची बात है, दक्षिण की तरफ है वृंदावन, किसको सोचेंगे बताओ, अपनी अपनी दिशा कहते सच्चे कहते हैं। नारायण अरु नगर के रज बराह अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्त्र एक, लड़ाई करो तो फोन करके आप लड़ता रहो, ना वो पहुंचेगा ना वो पहुंचेगा, दोनों जय राम जी जी के पास। और बोलो मन में उसे बोल, जो शंका हो बोलो।
भक्ति क्या है, योग क्या है?
भक्ति है भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेने, ज्ञान है जैसा जान लेना, योग क्या है कि उपकार केवल सेवा करना, ये योग कर्म योग है, वो योग है प्राण अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है। योग कई होते हैं, हृदय योग, हट योग, रियाज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कई योग है।
आपके मन में आई,
हमारे मन में ये बात आई, आपको जो अच्छा दिखे मार्ग उस मार्ग में आप चल पड़ो। ये जो संप्रदायों का खंडन मंडन है, ये साधकों के काम की चीज है ही नहीं। ये जो आचार्य हुए हैं वे लड़ो आपस में बेशक, अपने को समय कहाँ है, न ताकत है न भाजपा से, अपने तो साधन में तत्पर जुट जाओ, जो आप ठीक लगे वो। अरे भगवान पर रखो विश्वास, ज्ञान मार्ग के लिए भी भक्त मार्ग के लिए भगवान पर विश्वास रखो, वो चेता देंगे। अरे भगवान पर विश्वास नहीं हो तो उनकी कठिनता पड़ेगी, और भगवान पर विश्वास हो ज्ञान मार्ग भी भक्ति में सब सिद्ध हो जाएगी। जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित यतन थे ब्रह्म सदु कृष्ण अध्यात्म सब जान जाएगा। भगवान के चरणों का आश्रय रखना और नाम का जप करना, ये सबके लिए बड़ी भारी काम की चीज है। योग मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, भक्ति मार्ग में भी भगवान के नाम का जप करना, भगवान के चरणों और भगवान से प्रार्थना करना, ज्ञान योग विशिष्ट हो जाएगा, भक्ति योग विशिष्ट हो जाएगा एक भगवान के आश्रित होने से। ये सबके लिए बहुत बढ़िया मार्ग है, सुगम मार्ग है, सरल मार्ग है, बढ़िया मार्ग। एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणांगश्रेयो विदित्सया, कल्याण के 3 मार्ग मैंने बताए, ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग। वो अध्याय एक पढ़े जैसा है, आप उसका मनन करो और अपने साधक संदेह में उसका मनन करो, उसमें भी स्थित है, उसमें विरोध नहीं। आप खंडन खंडन जहां तक बढ़ने, मैं खंडन करता नहीं हूँ, खंडन करना अच्छा नहीं है। दयानंद जी महाराज ने खंडन किया, बन खंडन से मुक्ति होती है तो उन्होंने नहीं बताया, ये मार्ग नहीं है मुक्ति का मार्ग नहीं खंडन करना।
वृंदावन में आकर के व्रत अनुष्ठान आदि करने चाहिए कि नहीं
करना?
वृंदावन पा लिया अब क्या करना,
ये बात और है। अपने कहीं रहो, अपना करना चाहिए। वृंदावन की भक्ति का अनुभव हो जाए उसके लिए दूसरे किसी साधन की जरूरत नहीं है। असली चीज होती है वो नकली को नहीं मिलती, नकली होती है वो असली नहीं, असली में नहीं पहुंचता। जहाँ ये बात कही है कि वृंदावन का आश्रय ले लिया तो फिर कुछ भी करना जरूरत नहीं है, ये ठीक बात है, वरना हम लोग आप लोगों के काम की नहीं है,
अधिकारी नहीं है
हम उसके। उस ठीक आश्रय ले लिया, नाम रूप लीला धाम ये 4 चीज है, इनमें एक धाम का आश्रय ले लिया, कृतकृत हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। काऊ के बल भजन को और काऊ के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोगत पाव पसार। तो सोगत पाव पसार का अर्थ ये नहीं है कि भजन नहीं करे, सोने को टाइम नहीं मिलती है। सोगत पाव पसार का मतलब हमारे संदेह नहीं है, हम इसमें निश्चिंत है, ये पाव सब सोने का, ये नहीं बदल नहीं कर सो जाए, यस नहीं है। हमारे भरोसों को मर गया है राधा रानी हमारे विश्वास है करेगी राधा रानी आप ही करेगी हम क्यों चिंता करें बालक होता है चिंता थोड़ी कर चिंता करो माँ करो हम चिंता ही होंगे हम तो बस रहे आनंद से ये भक्ति मार्ग में सर्वथा शरण हो जाए भगवान ने खुद ने कहा सर्व धर्मान परिचय मामे कब शरणम ब्रज अहम पा सर्व पापे मोक्ष सब धर्मों को छोड़ दू मेरी एक शरण आ जाए सब पापों से मुक्त कर दूंगा तो धर्मों की कोई जरूरत नहीं त्याग कर दिया सबका पर तो आप विचार करो कि ये उपदेश अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने युद्ध रूपी धर्म छोड़ दिया क्या गीता सुनने के बाद युद्ध किया है सब धर्मों को छोड़ देना नहीं है धर्मों का आश्रय नहीं है धर्मों का भरोसा नहीं है धर्मों के अधीन नहीं है धर्म की कोई चिंता नहीं है भगवान के शरण है प्रतिष्ठा नहीं कि धर्म छोड़ देते ही है कुछ करने की आवश्यकता नहीं वो है उसका शरण ले लिया हमें चिंता नहीं है पर भजन खूब बनेगा और मैं तो ये मानता हूँ कि धाम का आश्रय लेने वाले का भजन छूटता नहीं करना नहीं पड़ता उसको करने की जरूरत नहीं पर भजन छूटता नहीं भजन कल्याण के लिए भजन नहीं करता वो उद्धार के लिए भजन नहीं करता पर भगवान का भजन मीठा इतना छूटे कैसे छोड़ा नहीं जाता उनसे गर्ज नहीं है भजन की कोई जरूरत नहीं है धाम में आ गया क्या जरूरत है परंतु भगवान का नाम मीठा बहुत लगता है आत्मा रामाष्ट मुनय निर्गंथा अप्युक्रमे कुरंती अहेतु भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि भागवत माया है आत्मा राम है जैसे हम सनकादि गए अब इन कोई साधन करना नहीं कोई भक्ति करनी नहीं ज्ञान नहीं योग नहीं जो भी सत्संग करते तीन तो श्रोता बन जाते हैं एक वक्ता बन जाता है एक कथा करते हैं और आशा वसन व्यसन नित्य नहीं जहाँ हरि कथा हो जा सुने बड़ी कथा सुनते हैं अब सुनने की आवश्यकता क्या है उनको भगवान शंकर कथा करते हैं पार्वती भी सुनती है क्या उनको क्या सीखना है अब छोटे से लाला का दर्शन करा दे शंकर भगवान आते हैं अब शंकर क्या दर्शनों से अब मुक्ति करना है ज्ञान प्राप्त करना है योग प्राप्त करना है क्या प्राप्त करना है पर भगवान ऐसे मीठे हैं वे छूटे कैसे हैं उसका नाम छूटे कैसे है उनका ध्यान छूटे कैसे उनकी कथा छूटे कैसे उस कथा करके नाम जप करके कुछ करना नहीं है हमें लेना कुछ भी नहीं है पर तो उसमें इतना मिठास है वो छूटता नहीं ऐसी भक्तों की बातें है जरूरत नहीं है व्यास भवरों से कुंवर के सोवत कुआं पसार कोई जरूरत नहीं है पर तो भजन छूटता नहीं नाम छूटता नहीं कैसे छोड़ा जाए जो आदमी निरोग हो जाता है वो दवाई नहीं लेनी पड़ती निरोग हो गया तो निरोग होने से अंदर नहीं खाएगा क्यों अब तो निरोग हो गया अब क्या जरूरत है जब दवाई क्या जरूरत है पानी की क्या जरूरत है अन्न की क्यों निरोग हो गए छूट जाएगा अंदर ऐसे भगवान का भजन नहीं छूटता सिद्ध पुरुषों को देख कर तो साधकों का भजन बनता है इसमें एक कहानी कहते लोग ये कहानियां है पूरी नहीं है परंतु समझाने के लिए बड़ी काफी है एक बड़े राजा थे वो हाथी पर बैठे हुए जा रहे थे तो ये निहारिया होते हैं निहारिया नारिया नारिया कहते धूल छानते हैं इस तरह से पानी लेकर पानी में वो छानते हैं सर निहारिया है वो निहारते उसको सोना चांदी निहारते निहारिया वो नारिया 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 कहते नारिया तो वो एक बूढ़ा जो वो धूल छान रहा था इकट्ठी करके छान रहा था तो राजा ने कहा कि ये धूल से मतलब क्यों करता है कि महाराज इसमें कोई सोना चांदी पैसा रुपया खो जाता है तो उसको मिल जाता है तो दिन भर में आठ आना बारह आना रुपया दो रुपया कभी पांच सौ दस रुपया भी मिल जाता है इसमें अपना कमाता है इसमें बूढ़ा हो गया हाँ महाराज मिलता है तो महाराज ने छिपके से एक सवा लाख के हीरे की मुंदरी थी वो उनके सामने मट्टी में रख दी, धूल मिला दी। कुछ महीनों और वर्षों बाद फिर सवारी निकली तो वो फिर वही सुई सांसा है, राजा को उसको मिली दिहारिये को। तो राजा ने पूछा, अरे कुछ पाया कि नहीं? तब उस आपने ये तो राजा की कृपा रही, इतनी मुंद्री कैसे कीमती रेत में कैसे मिले? अरे पाया कि नहीं, कोई को धूल छानता पाया कि नहीं? कहने तो पाया गया तो कि पाया सो इसी में पाया, इस बार छानता हूँ इसी में पाया, इसी में पाया है, इसको छोड़ कैसे दू? जिसे इतना लाभ हुआ वो छोड़ने की बात है, तो भजन से लाभ हुआ वो भजन छोड़ कैसे दे? भजन की जरूरत नहीं है, भजन की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जब की आदि कोई आवश्यकता नहीं है, पर आवश्यकता न होते भी छूटे कैसे? इससे बढ़िया काम कौन सा होगा जो कि छोड़ कर करोगे? अरे बढ़िया तो पहले भजन क्यों करते, वही करो पहले ही। अरे बढ़िया यही है तो फिर छूटेगा कैसे? वो तो स्वभाव हो भजन मारे, भगवान के भजन का स्वभाव बन जाता है। स्वास्थ्य क्यों लेते हो? अरे जीवन मर जाएगा, हम इस बात लेते हैं, कोई किसी उपाय करते हैं? अंजल क्यों लेते हो? अरे क्यों लेते, मर जाए नहीं तो। ऐसे भगवान के भजन में तदर पिता खिलाचारिता, तदर पिता अखिल आचार्य, सब आचरण भगवान के अर्पण कर देते हैं, कोई आचरण की जरूरत नहीं। पर तद्व तद विस्मरण परम व्याकुल से नारद जी सूत्र में लिखते है कि सब कुछ वो भगवान अर्पण कर देता है, पर तद विस्मरण भगवान की भूल होने पर महान व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली वो जल से दूर करे, ऐसे भगवान के स्मरण बिना व्याकुल हो जाता है। तो स्मरण निरंतर होता है, स्मरण करके लेना कुछ नहीं है, अब स्मरण करके कुछ लेना हो मुक्ति के लिए कुछ नहीं, भगवान की प्राप्ति होगी है क्या? पर तो होता है स्वभाव बदल मारे, स्वतः स्वाभाविक स्वास्थ्य इसके नाम के आश्रय से और धाम के आश्रय से और लीला के आश्रय से, किसी नाम रूप लीला धाम से किसी के आश्रय से अगर भजन ध्यान आदि छोड़ता है तो वो वास्तव में असली आश्रय नहीं है, नकली है। आश्रय से चिंता मिटती है, भजन नहीं छूटता है, छूटती है चिंता, क्या होगा कैसे होगा, निर्वाह कैसे होगा, परलोक में क्या होगा, कल्याण होगा नहीं होगा आदि, ये चिंता मिट जाती है, भजन नहीं छूटता है, चिंता छूट जाती है, ये मिट जाती है। यही प्रारब्ध में है, प्रारब्ध का भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगा, मैं प्रारब्ध से मिल जाए क्यों उद्योग करे, ये उद्योग छोड़ देना ये प्रारब्ध का काम नहीं है, प्रारब्ध नहीं समझता है वो, प्रारब्ध समझता है चिंता नहीं रहती। किसी विषय को ठीक समझेगा, चिंता भय उद्वेग आदि ये नहीं रहेंगे, भजन स्मरण होगा। जो तो यदिरा चलती श्रेष्ठ तत्त देवे तरोधर सत प्रमाण कुलते लोकस्तुते, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है दूसरे वैसे ही आचरण करते हैं तो आदर्श होता है, उसके आचरण दुनिया के लिए आदर्श होता है। ऐसे जिसको प्रमाण भी करते हैं लोग अनुभवन करते हैं, तो ऐसे बात बात हो सिद्ध होते हैं वो, उनका ये नहीं कि अब ये हमने ले लिया हम बस बड़े हो गए छोड़ गया, वो अभिमान होता है, वो साधन नहीं होता। संतों की आप सुनो, भक्तमाल आप पढ़ो, भक्त हुए कैसे हुए, बड़े बड़े ऊंचे भक्त हो गए, भजन के लिए समय नहीं मिलता, भजन करते करते समय नहीं मिलता बीच में बात करने को भी, भजन में इतना मिठास इतना आनंद है वो कोई थोड़े भी कल्याण के लिए करते हैं, हम कल उद्धार के लिए करते हैं, भगवत दर्शनों के लिए करते हैं, नहीं वो तो भजन को स्वभाव 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 हो गया, उसमें पाया सो इसी में पाया, जो पाया सो इसी में पाया, अब वो छूटे कैसे? कृतज्ञत्वापन उत्ते शंकराचार्य ने लिखा है, पहले करता है साधन उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए, और फिर साधन करता है कृतज्ञ पुराना हो गया। जिस साधन से परमात्मा की प्राप्ति हुई वो साधन छोड़ता है, वो कृतज्ञ है, उसे लाभ वो छोड़ देता है, कृतज्ञ है वो। कैसे छोड़ेगा? भगवान की कृपा है, चिंता मिट जाती है, शोक मिट जाता है, भय मिट जाता है, उद्वेग मिट जाता है, शंका नहीं उठती, कोई तरह संदेह नहीं होता। भिजते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशया क्षीयंते चास्ति कर्माणि तस्मिन् निष्ठे बराबरी। हृदय ग्रंथ सुंदर ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय दूर हो जाते हैं, सब कर्म क्षय हो जाते हैं। प्रार्थ का कहना है प्रार्थ भी कर्म क्षय, प्रार्थ का वो जो सुख दुख है वो क्षय हो जाता है, घटना घटती है। प्रार्थ का काम घटना घटाने का है, सुख दुख करने का नहीं है। सुख दुख होता है मूर्खता से। बेटा मरने वाला है तो तत्व की पुरुष का भी बेटा मर जाएगा, वो मर जाएगा, और मरने से दुख नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ। शोक नहीं तो रोजाना बेटा मरे हर्ज क्या हुआ? मरते तो बेटे ही मरते हैं रोजाना, जो चाहे 80 वर्ष 100 वर्ष का मरे, मरता तो बेटा ही है, किसी का बेटा ही है वो, क्या उसे मरने हम रोते हैं? मरता बेटा ही है, बोलो बिना बेटा कौन है? बता बेटा ही मरता है, मरता जो कुत्ते का मरता हो, गधे का मरता हो, सूअर का मरेगा, मनुष्य का मरेगा, मरता तो बेटा ही है हरदम, बेटा हरदम मरते रहते हैं। मेरा बेटा भाई ये रोग है तो मेरा अपना मिट जाता है, मौत हो जाती है, फिर बेटा मरो कितने ही मरो, क्या चिंता है? कौन पूछो, सब प्रश्न पूछो है, और जो मन में आवे शंका हो संदेह हो पूछो, शंका पूछो। पर मैं कहूं जो ही मानो ये आग्रह नहीं है, आपको जितनी ठीक से सब मानो छोड़ दो। मैं दुकानदार का माल होता है सब थोड़ी खरीदे हैं, मर्जी जो खरीदो पड़ा दो, आगे हमारी दुकान है पड़ा है हमारे यहाँ, आपको पसंद आओ खरीदो, नहीं नहीं सही क्या ऐसे वो मिल तो जाएगा, थोड़ा कष्ट कष्ट उठाना पड़ेगा, प्रार्थ का मिल ही जाएगा, नाम काम नहीं करेगा उस दंड होगा जो कष्ट पाना पड़ेगा, मिल जाएगा, जिएगा जरूर, मरेगा नहीं, पर कष्ट समझिएगा, क्योंकि उद्योग का त्याग कर दिया उसका दंड होगा। उद्योग करे अपने बड़ी सुख से मिलेगा, आराम से मिलेगा। और बोलो कोई संदेह हो बोलो, आप संकोच मत करो, नहीं आएगा तो मेरे को शर्म नहीं आती, मैं कह दूं भाई मैं जानता नहीं, कह दूंगा। इच्छा करो भीतर से, भीतर से उत्कट अभिलाषा, जय कर जय पर सत्य स्नेहु सोते मिलतन कसु संदेह, जय कर जय पर सत्य स्नेहु, सत्य स्नेह मिल जाएगा, मिल जाएगा। हमने एक कहानी सुनी है कि एक तत्व के महापुरुष है, तत्व जी उन्होंने, तो ये तत्व के महात्मा पुरुष गृहस्थों में भी होते हैं, साधुओं में होते हैं, माताओं में होते हैं, बहनों में भाइयों में भी होते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतर सब में होते हैं। उसके ये पक्षपात नहीं है कि इसमें होगा इसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में थे, तो एक दिन कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते घोड़ा अड़ गया वहां, अब इस तरफ चला चले ही नहीं, इधर चले इधर चले ही नहीं, मेहनत करी तो समझ गए इधर होकर थोड़ा चक्कर पड़ेगा पर चल जाएगा, इधर से ही इधर चल दिया। वो घोड़ा जा करके एक घर के आगे खड़ा रह गया, पूजन का भक्त हो गया, तो महाराज उतरे, उसे भीतर गए, बात हुई, वहां एक साधन करता था, उसके मन में थी कि मैं इतना साधन करूं, अगर ये कैसे करूं, ऐसी बड़ी शंका थी, उलझन थी उसके। तो संत आ गए, फिर पूछा कौन है, नाम से सुन रखा था, दर्शन किए थे नहीं, वो आप आ गए, बड़ी कृपा करी। मैं समझता था कि महाराज से पूछने को मैं चलूं, मिला हुआ था नहीं कभी, आप आगे बड़ा अच्छा हुआ। कैसे आना हुआ, कैसे भेगा, कैसे कैसे, मैं तो जा रहा था, घोड़ा हार गया, वो नहीं सारे आ गए। मैं तो सत्संग हुई, बातें पूछी, सब बातें बता दी, भोजन किया, आराम से रहे, समय पर वहां चल दिए। तो जाते हुए कहा कि देखो भैया, तुम्हारे कोई शंका हो तुम आ जाना, नहीं तो मेरे को समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। तुम शंका क्यों रखो, मेरे को आदमी बतला दूंगा। तो वो बोला महाराज अभी आप कैसे आए, कहते अभी तो घोड़ा हार गया, कहते घोड़ा हार जाए तो आ जाना, हमारे शरीर घोड़ा हट जाएगा आपका, सत्संग कैसे मिलता है, घोड़ा हट जाए मैं नहीं सुनगा, संतों को आना पड़े। वो जितने भी वहां जा रहा है वहां करना है, ऐसा इतफाक मिलता है, गाड़ी में मिल जाए, स्टेशन पर मिल जाए, मार्ग में मिल जाए, संत कैसे मिले, आपकी इच्छा चाहिए जो होगा जरूर मिल जाएगा। बड़ा आश्चर्य है जैसी बातें जीवन में घटी है, घटती है, हर एक की जीवन में घटती है, बस ये मानता हूँ, पर आप ख्याल नहीं करते, मिलते हैं ऐसे अच्छे से संत होते हैं, वे मिलते हैं बिल्कुल मुफ्त में। भगवान है ना, भगवान रो भगवान भक्त, हे तु रही जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, एक भगवान एक भगवान एक भक्त, बिना हेतु हित करने वाले होते हैं, तो उनका काम क्या है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई, अब उनको काम क्या रहा, जो साधक है उनके काम की चीज रही। माँ होती है बालक का पालन न करे तो माँ जीती क्यों, मर जाता से उसको, वो तो बालक के लिए जीती है। ऐसे तत्व के जीवन मुक्त तो साधकों के लिए ही जीते हैं, वो जीते क्यों है, कोई जरूरत नहीं उनको जीने की, साधकों के लिए तो साधक होगा तो वहां पहुंचेंगे। आपसे आप ही वो जानते नहीं, संत नहीं जानते, साधक भी नहीं जानते, परंतु वो फेरेगा ना, वो जानते हैं सब, वो मिला देता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी है, घटती है और घटेगी। आप किसी संत के पास रहते हैं, आप साधन करते हैं, उस साधन में अड़चन आ गई, अथवा अड़चन तो नहीं आई करने साधन, ऐसा महाराज विधान होता है, आपको दूसरी जगह जाना ही पड़ता है, जाते हुए जी भी खराब होता है, जाना चाहते नहीं है, ये हेडमास्टर है, ये क्लास बदल गए थे, ऐसा ठीक हुआ, अब इसलिए इसकी जरूरत है, उसे मिला देते हैं। तो विद्यार्थी वो समझता है कि मेरे को संतों का संग छुड़ा दिया, अरे इसके जितना तो काम हो गया, अब निजी की जरूरत है उसके पास पहुंचा देंगे, अब तलमा उठोगे तो भी पहुंचा देंगे। वहां कई दिन इस बात बहुत बढ़िया मिली है, पर ऐसा करते हैं कृष्ण मंदिर, उसका काम है उसका, और क्या काम है भगवान का, और समझते हैं। हम भगवान को नहीं जानते, क्या मेरे को भी भगवान नहीं जानते। आपके मन में सच्ची लालसा होगी, वो लालसा बढ़ाओ, भीतर की लालसा, उसमें अभिलाषा, वो भूख उस चीज की, कोई संत मिले, कोई महात्मा मिले, कोई मिले तो मिल जाएगा, ये केवल भूख बढ़ाने से, इच्छा होने से, भगवान का प्रबंध है। जैसे किसी से बात करना होगा ना, तो यहाँ जो ऑफिस है वो टेलीफोन का वहां लगाओ, अरे अमुक नंबर बुलाओ, फिर बस बात कर लो, ऐसे भगवान से कहते रहो, वो नंबर मिला लेंगे, टेलीफोन मिला लेंगे, और माता मिला आपके दायित्व, आप जिस मार्ग के हो, जिस चलते हो, उसको मिला देंगे, उसके पास सब नंबर है। आप जिस नंबर का चाहते उसी नंबर का बना देंगे, फिर करूंगा। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर साधन करना चाहिए। ज्ञान मार्ग से तो भी भगवान चरणों का आश्रय ले, भक्ति मार्ग से तो फिर तो आश्रय है ही भगवान का। भगवान का आश्रय लिए चलता हूँ, निश्चिंत होता, निश्चिंत होता, सब काम ठीक हो जाता है। और केवल केवल ज्ञान का ही जब मान स्वरूप है उसके लिए विधान नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा है दसवें अध्याय के पूर्वा चौदहवें अध्याय में, जहाँ ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, और बालक और ग्वाल बाल चुरा लिए ना, इसके बाद में स्तुति करी है ब्रह्मा जी ने। उस स्तुति में आशा है, स्तुति में श्रेय स्थिति भक्ति मुदस्य से विभो कृष्यन्ति ये केवल बोध लब्धये शेषामशोकेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। श्रेय स्थिति भक्ति मुदस्य से विभो, कल्याण का मार्ग बड़ा भारी राजमार्ग ऐसा भक्ति है, उस भक्ति को छोड़ करके क्रिश्चियन ये केवल बोध लब्धये, केवल बोध के लिए जो क्लेश उठाते हैं तेसा मसु क्लेश, वो दुख दुखी उनके पले पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता। तेसा मसु क्लेश एव शिष्य थे नान्य था स्थूल तुषावघाति नाम, स्थूल तुष रह गए अन्न में से निकाल दिया, उसको कुटज क्या निकलेगा, पसीने निकले और यदि वहां निकलेगी क्या, दर्द तो है नहीं उसमें। इस वजह से भगदेव त्याग केवल प्रयास करो, केवल प्रयास करो, धोखे में आकर मिलेंगे। और भक्ति आने को जो अन्न से आगे मरी आई, जहां भक्ति रहेगी, आपने सुना नहीं भागवत, भक्ति ज्ञान बैराग, ज्ञान बैराग तो बेटा है, अरे भक्ति है माँ, ये सब हो गए होते होते वो वृंदर में आते भक्ति तो होगी जवान, अरे बेटा हो गया बूढ़ा, अब बड़ी चिंता कर रही है क्या करे, माँ तो जवान बेटा बूढ़ा बूढ़ा सब है ना, अब उनकी चिंता हो रही, माँ की तो चिंता ही हुआ बूढ़ा हो जाएगी तो भी ना दिया है क्या हुआ, इन्हें सुनाया सब पाठ सुनाया वेद सुनाया सब बेरा ज्ञान है, तो दोनों बेटा मूर्छित, तो कहता भागवत सुनाओ, भागवत सुनाई तो ठीक हो गया। वो तीनों ही महाराज साथ ही नाश उठे, भक्ति भी ज्ञान भी बैराग, तो क्या सिद्ध क्या हुआ कि भगवत भक्ति करने से भगवान की लीला गुण सुनने से ये ज्ञान बैराग सब पुष्ट हो जाते हैं सब। फिर से एक कहा उपाय हम ज्ञान बैराग भक्ति तीनों को एकादश करने में वर्णन आया ठीक तरह से। जैसे भोजन करता है ना आदमी, तो भोजन से क्षुधा की निवृत्ति होती है, तृप्ति होती है, और संसार से और की विवृत्ति हो जाती है, तो वहाँ तीनों चीज हो जाती है, भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान भी हो जाता है, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, सिर्फ एक अकार तीनों एक कारण हो जाते हैं सभी भगवान को करने से, एक कारण है ज्ञान भी पूर्ण हो जाए, भक्ति भी हो जाती है, ज्ञान भी हो जाए भक्ति हो जाती है। तो ये मतलब ये है कि भगवान के गुण सुनो, गाओ, मस्त रह जाओ, खंडन मत करो, ज्ञान का किसी का भी खंडन मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का दोष मत देखो, अपने मार्ग में ठीक चलते रहो, ठीक हो जाएगा सब तत्परता से। और खंडन मन में लग जाओगे, मन में द्वेष हो जाएगा, दूसरी तरफ घृणा हो जाएगी, एक एक संप्रदाय को लेकर दूसरे संप्रदाय का खंडन करोगे, पतन हो जाएगा। अपने संप्रदाय का अनुसरण करना है, महिमा करने करनी ये नहीं है, जय बोल देना केवल इतना ही नहीं है, अपना जीवन उसके अनुसार बनाओ, जिस संप्रदाय में हो उसके अनुसार जीवन बनाओ, और किसी की निंदा कुछ मत करो, काट साट मत करो, अपना जीवन बनाओ।
अगर सत्संग की भूख एक जैसी क्यों नहीं रहती, कभी तो ज्यादा होती कभी कम हो जाती
है? ये भोगों की इच्छा होती है उतनी सत्संग कम हो जाएगा। जितनी भोगों की संग्रह की दो चीज, संग्रह करने की भोग भोगने की इच्छा बढ़ जाने पर भक्ता भगवान भक्ति कमजोर हो जाएगी। जिस समय सत्संग से ये भाव बढ़ेगा वो भोगे से कम हो जाएगी। ये आपस में होता है दोनों ही, माप तो उसमें होता रहता है। उद्देश्य बनाइए कि हम भोग भोगेंगे नहीं, संग्रह की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और संग्रह करने वालों को नहीं मिलता इतना सुख मिलेगा, इसी चीज मिलेगी। रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे, सिद्धि और विद्या सब आ जाएगी। एक भगवान में सचेतन लग जाए, लोक और परलोक शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक तत्पर से लग जाए, घृणा ना करे, दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे को छोटा ना समझे, दूसरा भ्रम में है, दूसरा गलती में है, ऐसा ना समझे। दूसरों का पता नहीं भाई क्या है कैसा है, पता नहीं। ये बात तो सच्ची है, भ्रम में है, वो खराब है, वो नीचा है, जानता नहीं, ये बात झूठी है। हमारे को पता नहीं, ये बात सच्ची है। हम जिस मार्ग में समझते हैं उस मार्ग में ऐसा है, दूसरे मार्ग में कैसा है भाई हमारे को ज्ञान है, हम जानते नहीं। सच्ची बात है, और कहते नहीं उसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है, उसमें तो ये गलती कर ही गलती है, तो पूरा जानते नहीं हम कैसे कह रहे हैं। हम जानते नहीं भैया, इस मार्ग को हम जानते हैं, करो सीखो। एकदम ठीक बात। अपने उत्साह से लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, मन बुद्धि लगा दो, लगा दो जबान, लगा दो सही से सेवा करो, सुख पहुंचाओ अपने, तो इस बात में लगे रहो। काट छाट मत करो, निंदा मत करो, घृणा मत करो, भीतर से किसी को बुरा मत समझो। आपको कोई ठेका थोड़ी दिया है, आप अपना उद्धार करो। होगा सोई जो राम ने रस रखा है, रचेंगे नहीं, रस रखा है पहले से, वो ये होगा वो। अरे भगवान की कृपा भरोसा को सब होगा, एक ही बात हुई ना, दो बात क्या हुई बताओ।
सेवक रुचि रखी,
और तो सेवक की रुचि रखते हैं तो रुचि तो रखते हैं, तो भगवान की भक्ति में चलने वाले के योग क्षेम भाव में हम जितनी आपको प्राप्त होगी उसकी रक्षा करेंगे और नया कृपा करेंगे। और निर्वाह कैसे होगा वो भगवान कहते मैं आप ही करूंगा, योग समभाव में हूँ। अनन्या संतन तो माम ये जरा परिपाषाम मिथ्याभियुक्ता नाम योग क्षेम भाव में हम, नंबर 22 श्लोक में सब उनका योग संभव करता हूँ। तो भगवान करते हैं सभी, परंतु योग से हमें चाहना नहीं करते, निर्योग क्षेम आत्मान भगवान के तुम है तो ऐसा बनो नित्य सत्तो निर्योग क्षेम आत्मान। अपनी चाहना कोई नहीं, भगवान करे न करे, पूर्ति करे न करे, उनकी मर्जी है। हम तो उसमें लगे रहेंगे, उनको याद करेंगे, उनके भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, गुरु सुनेंगे, उनकी लीला सुनेंगे, लीला पढ़ेंगे, लीला का चिंतन करेंगे, भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे, हम तो लग रहेंगे। अब वो क्या करेगा कैसे करेगा हमें क्या पंचायत, इसे बच्चा तो माँ की गोदी में पढ़ा रहे, अब बारे में तो माँ 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 कर रहे बस, ऐसे भगवान का नाम लेता है। करेंगे आप या? नहीं करो तो न करो, अपने क्या मतलब है, अपने तो भगवान को याद करना है। अब वो पालन करे अच्छी बात, सुख पहुंचावे, दुख पहुंचावे, जो पहुंचावे, अपनी क्यों पंचायत है उसकी। अपने आप को तो भगवान को दे दिया हमने, अब हमने चिंता छोड़ दी। भक्त तो भगवान पर छोड़ देता है, योग मार्ग संसार पर छोड़ देता है, और ज्ञान मार्ग प्रकृति पर छोड़ देता है, प्रकृति मार्ग वो होता है, और जन्म मार्ग मार्ग ही अपने पर दे देता है। चार मार्ग हुए, एक भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, जन्म मरण मारे अपने पर चलाई गई जन्म मरण मारी है ये भक्ति पर सो भगवान पर छोड़ दिया भगवान भजन करता है सुख आवे दुख आवे पर कुछ पंचायती करना ये भक्त होते हैं। और योगी होते हैं वो संसार की सेवा करे सब काम करे संसार को छोड़ दिया पालन करो न करो कुछ नहीं करो करो ना करो मर्जी है। और ज्ञान मार्ग प्रकृति के द्वारा जो हो रहा है अपने क्या मतलब इसे शरीर रहे जावे ठीक है मैं ठीक है बीमार है सीमा अपने क्या संसार को मतलब नहीं अपने शरीर से शरीर से हमारे मतलब नाश हुआ नहीं तो अपने अवनाश तत्व में इससे शरीर को कोई परवाह नहीं मर जाए और अपने पर भार लेना जन्म मर में जाना है तो भार देती है सदा आनंद ही आनंद का मार्ग है। कोई मार्ग में चलो ज्ञान मार्ग में चलो भक्ति मार्ग में चलो योग मार्ग में चलो आनंद चलते रहो परंतु बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज कुसुम छोड़ दो और बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज अभी सुधरे अभी भी आज भी अभी हुए राम को नाम जप भगवान का हो भगवान नाम जपो भगवान का हो कोई भगवान नाम जपो कुसुम मत करो पसंद मत करो खराब काम मत करो भूल करके भी हो जाए तो भगवान से हे नाथ हे नाथ बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ इसको भगवान सुना दे भाई कोई पद सुना दे हो गया सुना